ओम शांति। तीन दिन से हम मैजिक ऑफ साइलेंस सुन रहे हैं। इस शांति की शक्ति से हमने पहले स्वयं को जाना, कल परम पिता परमात्मा का संपूर्ण परिचय हम सबने प्राप्त किया। आज हम सीखेंगे कि हमें मेडिटेशन कैसे करना है, मेडिटेशन में क्या करना है और क्या नहीं करना है। मेडिटेशन बहुत इजी है, जिसे हर एक कर सकता है, बच्चे, युवा, वृद्ध, बीमार, सब कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। कईयों को लगता होगा कि तो बहुत ही मुश्किल है। आज जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि इतना आसान है, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। आज का विषय बहुत ही सरल, बहुत ही रोचक है। इसे हम प्रारंभ कर रहे हैं परम पिता परमात्मा की याद से। जब हम यह आपस में मिलते हैं तो हम क्या बोलते हैं एक दूसरे को, क्या बोलते हैं? ओम शांति। तीन दिन से बोल रहे हैं ना सभी, एक बार बोलो एक दूसरे को। सही अर्थ को याद रखते हुए बोलना है। किस किस को पता है ओम शांति का अर्थ क्या है? जी, कौन सुनाएगा? जी, जो पहली बार आए उनमें से कोई बताए कि ओम शांति का अर्थ क्या है। आपने हाथ खड़ा किया ना, बोलिए। जी, आपके पीछे भी है एक। सबको पता है तीन दिन में हम सबने चीज सीख ली है कि मैं आत्मा शांत हूं और मैं शांति के सागर, क्या नाम है उनका, शांति के सागर का नाम क्या है? हाथ खड़ा करेंगे, देखते किस किस को याद है शांति सागर का नाम क्या है। जी, शिव बाबा, राइट आंसर। अपने लिए ताली बजाएंगे। और तीसरा, ओम शांति जब हम बोलते हैं तो इसका तीसरा अर्थ है कि मैं आत्मा शांति धाम की रहने वाली हूं। ये साकार लोक है जहां हम रहते हैं, इससे ऊपर सूक्ष्म लोक है और उससे भी ऊपर तीसरा लोक धाम कहते हैं, शांति धाम कहते हैं। उस घर है पार्ट प्ले करने के लिए बोलते हैं। तो हमने खुद को भी बोलनी है ओम शांति, अपने को याद ला देना है कि मैं आत्मा शांत हूं। शांति सागर, जैसे ही शांति सागर कहते हैं ना, तो ये पीछे चित्र हम सबने देखा है बिंदु स्वरूप वाला, अभी पहले भी जो रखा हुआ था, किस किसने पहले देखा हुआ है चित्र, देखा हुआ है ना? किसका चित्र है वो? शिव बाबा का। तो जब हम कहते हैं ओम शांति तो तीनों अर्थ हमें याद आ जाएं कि मैं आत्मा शांत हूं। जैसे कहते हैं शांत हूं तो यहां पे स्टार फील करेंगे, फिर मैं शांति सागर शिव पिता की संतान हूं और शांति धाम से यहां आई हूं। शांति धाम मेरा असली घर है। यहां पे जो हम योग सीखने जा रहे हैं उसका नाम है राजयोग। क्या नाम है? सभी बोलो, राजयोग। राजयोग का अर्थ है एक ऐसा योग जिसमें आत्मा का मिलन परम पिता परमात्मा से होता है। दुनिया में बहुत सारे योग प्रचलित हैं, पर सभी योगों का राजा है, सभी योगों में से श्रेष्ठ राजयोग है। इस राजयोग में आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है। ऐसे कुछ लोग शारीरिक योगा को भी योग समझते हैं, वो तन की फिटनेस के लिए जरूरी है, आप जरूर किया करें, क्योंकि तन स्वस्थ है तो ही मन परमात्मा में लगता है। अगर हमारा तन स्वस्थ नहीं तो हम बैठ ही नहीं पाएंगे, सुन भी नहीं पाएंगे। तो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जो फिजिकल योगा है, एक्सरसाइज है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है. लेकिन मन के स्वास्थ्य के लिए राज योगा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 80% डिजीज आर ओनली ड्यू टू मेंटल टेंशन. अगर हमारा मन स्वस्थ नहीं है तो हम तन की फिटनेस के लिए कितने भी प्राणायाम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो उसका असर नहीं होगा. तो तन के स्वास्थ्य के लिए हम प्राणायाम, एक्सरसाइज, वॉकिंग जरूर करेंगे, लेकिन मन के स्वास्थ्य के लिए राजयोग बहुत ही जरूरी है. ये राजयोगा बहुत ही आसान है. इसी योग को कर्म योग भी कहते हैं. मतलब हाथों से आप कर्म कर रहे हैं और आपका मन शिव बाबा से जुड़ा हुआ है, ऐसा हो सकता है ना? जैसे यहां बैठे बैठे आप अपने घर में पहुंच सकते हैं, एक सेकंड में आप अपने घर का द्वार खोल के अपने ड्राइंग रूम में बैठे और वहां से न्यूज़पेपर उठा के पढ़े, एक सेकंड में आपकी बुद्धि कहां चली गई? घर चली गई ना. तो जैसे यहां बैठे अपने मन बुद्धि से आप घर चले जाते हैं, ऐसे कार्य करते करते आपने शिव बाबा को याद करना है. आप चल रहे हैं, आप उनकी याद में चल रहे हैं. आप खाना खा रहे हैं तो शिव बाबा की याद में खाना खा रहे हैं. जो भी हाथों से कर्म हो रहा है वो करते हुए मन में शिव बाबा को याद करते रहना और उस कर्म को सेवा भाव से करना, इसको हम कर्म योग कहते हैं. इजी है ना कर्म योग? जैसे किसी को खाना बनाने में 2 घंटे लग गए, 3 घंटे लग गए, तो कई बार हम सोचते हैं कि ये काम पूरा हो जाए हम फिर मेडिटेशन करेंगे, ये काम पूरा हो जाए फिर करेंगे. अभी आपने ये नहीं सोचना कि ये पूरा हो जाए तो करेंगे, नहीं, ये करते करते मुझे मेडिटेशन करना है. अपने कार्यों को, अपनी जिम्मेवारियों को कुशलता से निभाना, ये भी मेडिटेशन होता है. ध्यान से सुनिएगा, जो प्रभु ने आपको जिम्मेवारी दी लौकिक में अलौकिक में, आपके जो कर्तव्य बनते हैं, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको बखूबी निभाना, कुशलता से निभाना, ये भी मेडिटेशन होता है. क्योंकि इससे आपको एक आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है. कार्य भी करना, जिम्मेवार बन के करना, लेकिन वो करते हुए इक्वली हल्के रहना. मेडिटेशन का मतलब घर बार छोड़ के जाना नहीं, मेडिटेशन का मतलब अपने कर्तव्यों से पलायन करना नहीं. आपको जो कर्तव्य मिले हैं, आपकी जो जिम्मेवारियां हैं, उसको खुशी खुशी निभाना, बहुत प्रसन्नता से, संतुष्टता से निभाना, उसे छोड़ करके ना जाना, ये भी मेडिटेशन होता है. इस राजयोग को हम कर्म योग भी कहते हैं और सहज योग भी कहते हैं. सहज योग इसलिए, कई बड़े आलसी होते हैं और वो लेटे ही रहते हैं, वो उठ के कर सकते हैं और दूसरों को क्या कहते हैं, जी मैं तो सहज योगी हूं. ये सहज योग आलस्य वाला नहीं, ये आपको एक्टिव अलर्ट बनाने वाला है. सहज इसलिए कि कभी आपका तन स्वस्थ नहीं है, आप नहीं बैठ पा रहे, आपको बैक पेन है, कोई और व्याधि है, आप बेड पर लेटे हुए हैं, तो भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं. वो आपका जमा होता रहता है, आपका तन साथ नहीं दे रहा पर मन आपका बिल्कुल स्वस्थ है, आपने उसको बीमार नहीं होने दिया. कभी कभी हमारा तन बीमार होता है, उसके साथ साथ मन भी बीमार हो जाता है. जो भी लोग मिलते हैं, हम बार बार बीमारी का ही चिंतन करते हैं और वर्णन करते हैं, उससे बीमारी और बढ़ जाती है. बहुत सारे लोग हैं जो मन से बीमार है, तो राजयोग हमारे मन की बीमारी को भी ठीक करता है. राजयोग ही कर्म योग है, राजयोग ही सहज योग है. इसके बहुत सारे नाम हैं पर ये मुख्य नाम है. कौन कौन से, कौन कौन से? सहज योग है और दूसरा कर्म योग है. कर सकते हैं ना, सब कर सकते हैं, सहज योगी भी हैं हम, कर्म योगी भी हैं, लेकिन सहज योग का मतलब आलसी बन जाने से नहीं है। सहज योग का मतलब मन में अगर हम इस तरह से आलस्य से कहीं ऐसे अपने कार्य से विमुख हो जाते हैं तो वो सहज योग नहीं है। ऐसे मैंने कईयों को प्रैक्टिकल में देखा है, जैसे वहां पर एक प्रोग्राम चलता है, साप्ताहिक प्रोग्राम, तो उसमें दो पुरुषार्थी आपस में बात कर रहे थे। तो एक पूछता, आप कितने बजे उठते हो? कहते मैं उठ जाता हूँ 3:30। कहते क्या करते हो इतनी जल्दी उठ के? कहते मैं उठ के मेडिटेशन करता हूँ, बहुत अच्छा लगता है परमात्मा से बात करना, उनसे शक्ति लेना। तो दूसरे वाला पूछता है पहले वाले से, आप कितने बजे उठते हो? कहते मैं तो आराम से 6-7 बजे उठता हूँ। कहते इतनी लेट? कहते जी भगवान खुद कहता है सहज योगी बनो, मैंने कोई इतने पाप नहीं किए हुए कि मैं जल्दी उठूं मेडिटेशन करूं। अब ऐसे भी आलसी कुछ लोग हैं और वो अपने आप को फिर क्या कहते हैं, मैं सहज योगी हूं, पर ये सहज योग नहीं है। सहज योग का मतलब कि आप चलते फिरते उठते बैठते परमात्मा को याद कर सकते हो। अभी जो मेडिटेशन है जिसको हम राजयोग कहते हैं, इसके बहुत सारे फायदे हैं। क्यों करना चाहिए मेडिटेशन? आपको लगता है करना जरूरी है? कौन कौन कहते हैं करना बहुत जरूरी है? क्यों करना चाहिए? कोई फायदा सुना सकते हैं आप जो आप फील कर रहे हो इन 3 दिनों में? राजयोग से क्या फायदा होता है? मेंटल पीस मिलती है, राइट? हाँ, जो हमारी ओवर थिंकिंग है वो कम हो जाती है, हम उसे ओवरकम कर पाते हैं। और बोलिए, कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। आप सबने प्रैक्टिकल में देखा है कि इस मेडिटेशन से आपके अंदर एक स्टेबिलिटी आती है जिसको हम कहते हैं स्थित प्रज्ञ। बहुत जरूरी है जीवन में स्थित प्रज्ञ बनना। ये योग हम सबको स्थित प्रज्ञ बनाता है। बहुत सारी चीजें जिंदगी में आएंगी चली जाएंगी, पर आपको एक चीज है जो संभाल के रखनी है, वो है आपकी मानसिक स्थिति। उसको आपने कभी नहीं खराब होने देना। अचानक आपको प्रॉफिट भी हो जाएगा, अचानक लॉस भी हो जाएगा, लेकिन आपको इंटरनली डिस्टर्ब नहीं होना, इंटरनली आपको स्टेबल रहना है। ये राजयोग की बहुत बड़ी प्राप्ति है। आपने सुनी होगी, एक बड़ी प्रसिद्ध बात है कि एक बार एक हीरे के व्यापारी होते हैं, तो उनका स्पिरिचुअलिटी में बहुत इंटरेस्ट था। तो एक बार वो बैठे हुए थे, मीटिंग ले रहे थे, उस मीटिंग में उनका एक सेक्रेटरी आता है और आके कहता है, सर आज कुछ हीरे खो गए हैं। तो जैसे वो मैसेज सुनते हैं तो आंखें बंद कर लेते हैं और देखकर कहते हैं, इट्स वंडरफुल। शांत हो जाते हैं, अपना कार्य करने लगते हैं। विद इन 1 आवर उनका सेक्रेटरी वापस आता है, आके कहता है, सर जो हीरे खो गए थे वो मिल गए हैं। दोबारा से जैसे सुना उन्होंने आंखें बंद की और कहा, इट्स वंडरफुल। ये सचमुच अद्भुत बात है, बहुत ही अद्भुत बात है। तो उनका सेक्रेटरी सोचता है कि ये तो बड़ी अद्भुत सी बात है कि मैं पहले मैसेज लाया, हीरे खो गए, तो भी इन्होंने कहा बड़ी वंडरफुल बात है। जब मैंने मैसेज दिया कि मिल गए, तब भी इन्होंने कहा बड़ी वंडरफुल बात है। तो इनसे पूछना तो चाहिए। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही जो हम सबके भी बहुत काम की है और वो आप यहां से सीख करके जाएंगे। उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। क्या दिया होगा? हम सबके काम की बात है, वर्क प्लेस पे बहुत काम आएगी चीज, घर में भी बहुत काम आएगी। उन्होंने क्या रिप्लाई किया? उन्होंने कहा कि जब आपने कहा ना हीरे खो गए हैं, तो मैं अपने आप को देख रहा था अंदर की ओर कि मेरे मन की शांति जो इन हीरों से बढ़कर है, कहीं मैंने उसे तो नहीं खो दिया। तो मैंने देखा मैं इंटरनली बिल्कुल ठीक हूं, स्टेबल हूं, इसलिए मैंने कहा इट्स वंडरफुल। सेकंड टाइम जब आप ये मैसेज लेकर आए कि हीरे मिल गए हैं, तो मैं फिर से अपने आप को देख रहा था, मैंने अंदर के संसार में अपने आप को देखा कि कहीं मैं अब इतना खुश तो नहीं हो गया कि मैं अपने को संभाल ही ना पाऊं। ऐसे भी बहुत लोग होते हैं ना कि खुशी के मौके पे वो अपने को संभाल नहीं पाते और वो रोने लगते हैं, खुशी में रोने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाते। ऐसा नहीं कि हमें कोई खुशी के मौके पे खुश नहीं होना, पर हम संभल सकें। एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उन्होंने एक बात सुनाई अपने जीवन की। कहते मुझे ऐसा लग रहा था जब मैंने 12th के एग्जाम दिए कि मैं पास नहीं हो पाऊंगा, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। जब रिजल्ट आया तो मैं देखने के लिए गया तो मेरा बहुत बड़ा फोटो अखबार में छपा हुआ था, मुझे टॉपर डिक्लेयर किया गया। जैसे ही मैंने देखा तो मैं बेहोश हो गया, मुझे लोग घर में लाए, मुझे बहुत घंटों के बाद होश आया क्योंकि मुझे कल्पना ही नहीं थी कि मैं टॉप कर सकता हूं। अब ये खुशी की बात थी, लेकिन खुशी की बात में भी वो अपने आप को संभाल नहीं पाई। तो जीवन में बहुत कुछ होता रहेगा, कुछ आएगा भी कुछ जाएगा भी, पर हमें क्या संभाल के रखना है? अपनी इंटरनल स्थिति को बहुत अच्छा बना के रखना है। ये राजयोग का फायदा होता है। क्यों करना है मेडिटेशन? इसी से स्टेबिलिटी आती है और इसी से आप अपने संबंधों को निभाना सीखते हैं। जो हमारे लौकिक में संबंध है हम उनको निभाना सीखते हैं। अपने साथ भी हमारा एक रिश्ता है, खुद के साथ भी हमारा प्रेम होना चाहिए। कुछ लोग अपने से प्रेम नहीं करते, वो सोचते मेरा तो जीवन ऐसे ही बेकार है, पता नहीं जिंदगी कब कटेगी, है ना। बी ऑनेस्ट, कितने लोग कहते हैं कि मैं अपनी जिंदगी को खुशी से जी रहा हूं, जरा हाथ खड़े करना। सच बोल रहे हैं ना? मैं उनसे भी बहुत खुश हूं जिनके हाथ नीचे हैं कि वो सच बोल रहे हैं। अगर हमें ये लगता है ना कि हम जिंदगी काट रहे हैं तो इसका मतलब कुछ बदलाव की जरूरत है, और वो बदलाव अपने में लाना है, दूसरों के पीछे नहीं लगना, खुद को ठीक करना है। तो इस मेडिटेशन से हमारा खुद से रिश्ता बहुत अच्छा हो जाता है। जब आप खुद से प्यार करते हैं, खुदा से प्यार करते हैं, तो खुदा की सब रूहों से भी आपका बहुत प्यार होगा। आपको कोई भी बुरा नहीं लगेगा, आपको लगेगा सब अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति गलत नहीं, सब अपने तरीके से ठीक है। ये वैरायटी भी एक ब्यूटी है, सब नंबरवार है। तो इसकी बहुत बड़ी प्राप्ति है ये कि आप मेडिटेशन के द्वारा सब संबंधों को बहुत अच्छे से निभाते हैं। एक और फायदा, इससे आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। कितने भी आप अस्वस्थ हों लेकिन यहां आप सोचते हैं मैं संपूर्ण स्वस्थ हूं, तो वो शारीरिक स्वास्थ्य जब आपका ठीक नहीं है उसका इफेक्ट आपके मन पे नहीं आता। मैंने देखा है भयंकर से भयंकर व्याधि में राजयोगियों को मुस्कुराते हुए देखा है। तो राजयोग की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आपका मन हमेशा स्वस्थ रहता है। और आपका शरीर कितना भी अस्वस्थ क्यों ना हो, मन स्वस्थ है ना, आप उसे चला सकते हैं। कईयों को शारीरिक रूप से कोई रोग नहीं, पर यहां पर एक रोग है, बहुत ज्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग, सोचते ही रहते हैं। ऐसे लोग ना तो या तो ज्यादा ही सोते हैं या बिल्कुल नहीं सोते हैं। ऐसे लोग या तो बहुत ज्यादा खाएंगे या फिर खाएंगे ही नहीं। तो राजयोग से एक फायदा हो जाता है कि आपका मन भी तन भी स्वस्थ हो जाता है। बहुत सारे प्राप्तियां हैं इससे, मेडिटेशन से आप फील कर रहे होंगे, और आप लिखना कि मेरे लिए मेडिटेशन जरूरी क्यों है। इस राजयोग में जब हम मेडिटेशन की बात करते हैं तो कुछ लोग भय से परमात्मा को याद करते हैं, डर के कारण। अब देखना क्या मेरी याद सच्ची याद है। डर से भगवान को याद करना, क्या वो याद परमात्मा तक पहुंचेगी? कुछ लोग स्वार्थ से याद करते हैं, जब उन्हें कुछ चाहिए बस वो तभी भगवान जी के पास जाते हैं, और तो वो क्या कहते हैं, मैं इतने नारियल चढ़ाऊंगा, ये करूंगा, पहले ये कर दो फिर मैं ये करूंगा, इस तरह की कंडीशन रखते हैं। ये स्वार्थ वाली याद, क्या ये सच्ची याद है? कुछ लोग केवल दुख आने पे याद करते हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा है वो मेडिटेशन हट में बैठते हैं, जैसे कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो 40 दिन के लिए रोज आएंगे, प्रॉब्लम गई तो वो भी गए, वो नहीं आते दोबारा। फिर उनको बहनें पूछती हैं कि आप तो अच्छा भला मेडिटेशन कर रहे थे, अब क्यों नहीं आ रहे? कहते चाहते तो हैं पर आ नहीं पाते। कहते जो काम करवाना था ना वो हो गया। तो परमात्मा से हमारा रिश्ता कैसा है? स्वार्थ वाला। कई लोग नियम निभाने के लिए याद करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं पर नियम निभाने के लिए, वो नेमी नाथ है। चलो, ना करने से तो नियम निभाना अच्छा है। और एक होते हैं प्रेमी नाथ, जो नियम में प्रेम शामिल करते हैं, जो परमात्मा को किसी स्वार्थ से याद नहीं करते, डर से याद नहीं करते हैं, या दुख में ही याद नहीं करते, पर दुख हो या सुख हो मेरे मन में उसकी याद सदा रहनी चाहिए। कईयों के जीवन में दुख आते हैं, परिस्थितियां आती हैं, तो भगवान को याद करना छोड़ देते हैं। जैसे एक बहन ने मुझे बताया, कहती कि मैं पहले करती थी मेडिटेशन, जब से मेरे भाई ने शरीर छोड़ा तो मैंने मेडिटेशन करना छोड़ दिया, मंदिर जाना भी छोड़ दिया, किसी भी अच्छे स्थान पे जाना छोड़ दिया। क्यों? कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हम भूल जाते हैं कि ये काम भगवान नहीं करता है, वो थोड़ी किसी को मारता है इस तरह से। अगर वो ऐसा करता है तो हम दुख में उसको क्यों याद करते हैं ना? दुख के समय कौन याद आता है? ईश्वर याद आता है ना। केवल वही है जिसकी याद से दुखों को सहने की शक्ति मिलती है। उसका नाम है दुख हरता सुख करता। क्या नाम है? बोलो। शिव बाबा दुख हरता सुख करता है, मतलब उसकी याद से हमें दुखों को सहने की शक्ति मिलती है। वो किसी को दुख नहीं देते हैं, अगर वो दुख दे तो फिर याद क्यों करें? दुख की परिस्थिति में हमें केवल परमात्मा ही याद आता है, बड़े से बड़ा नास्तिक भी उसे ही याद करता है। तो परमात्मा को हम भय से याद ना करें, डर से याद ना करें, पर एक अच्छा सा रिश्ता बना लीजिए कि मेरी जिंदगी में सुख हो या दुख हो पर तुम्हारा साथ और हाथ सदा रहना चाहिए। किस किस के मन में आती है ये बात कि मेरी जिंदगी में चाहे सुख हो या दुख हो पर मुझे परमात्मा का साथ चाहिए? हाथ खड़ा करेंगे, किस किस को चाहिए? वेरी गुड। तो उसके लिए हमें क्या करना है? परमात्मा पिता को जब याद करना है तो उसमें हम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे? आज आपको लास्ट में कुछ विजुअल्स दिखाए जाएंगे कि मेडिटेशन में आपको क्या क्या करना है, क्या क्या आप कर सकते हैं। जब आप मेडिटेशन करना चाहते हैं तो आपको तीन काम करने हैं और तीन काम नहीं करने हैं। क्या नहीं करना? नो कंप्लेन, इधर उधर की शिकायतें नहीं। नो डिमांड, कुछ मांगना नहीं, ये दे दो वो दे दो। इतने काबिल बनो कि वो आपको दिए बिना रह ना सके। जैसे माली अपने पौधों की संभाल खुद करता है, गायें अपने बच्चे की संभाल खुद करती हैं, हम सब परमात्मा के बच्चे हैं। हमारा इतना सुंदर रिश्ता हो कि उसको भी हमारी याद आए ना, परमात्मा को भी हमारी याद आए। क्योंकि मेडिटेशन क्या है? ये टू वे कम्युनिकेशन है। प्रेयर में केवल हम अपनी बात बोलते हैं, मेडिटेशन में हम उसकी बात भी सुनते हैं। तो मेडिटेशन करते समय हमें इतना अच्छा एक रिश्ता बना लेना है कि हमें स्वतः ही बाबा की याद आती रहे और शक्ति मिलती रहे। क्या नहीं करना? पहली बात, नो कंप्लेन, नो डिमांड। और बार बार ये नहीं कहना मैं नीच हूं, मैं पापी हूं, मैं कपटी हूं, नहीं। जैसा सोचेंगे वैसा बनते जाएंगे। कई सोचते हैं कि ये तो विनम्रता का भाव है। हाँ, वैसे इंसान को विनम्र बनना है, पोलाइट बनना है, लेकिन जैसा सोचते हैं ऐसा ही बन जाते हैं। आप इसके स्थान पर कहें, मैं जो हूं जैसा हूं मैं बाबा का हूं। क्या कहेंगे? बोलो, मैं जो हूं, मेरे साथ साथ बोलेंगे, मैं जो हूं जैसा हूं बाबा का हूं, बाबा मेरे हैं। फिर से बोलेंगे, मैं जो हूं, हाथ रखिए, मैं जो हूं जैसा हूं बाबा का हूं, बाबा मेरे हैं। 5 सेकंड के लिए फील करेंगे एक बहुत सुंदर रिलेशन कि मैं बाबा का हूं, बाबा मेरे हैं। वो महाज्योति बिंदु रूप आपके सामने रहे और अपने वायदे को रिवाइज कर लेंगे, मैं जो हूं जैसा हूं बाबा का हूं, बाबा मेरे हैं। ओके, अपना प्रॉमिस याद रखिएगा. तीन काम आपको करने हैं. क्या करना है? सबसे पहले तो जो उसने दिया उसका शुक्रिया करना है. वो गीत है ना, तूने मुझे दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है. ये एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड हमेशा रहे. जो मुझे मिला वो कितना अच्छा है उसको फील करना है. पहला काम शुक्रिया करना है. दूसरा काम उसके गुणों का चिंतन करना है. जब आप मेडिटेशन करते हैं तो परमात्मा के गुणों का चिंतन करें. इसका क्या फायदा होगा? उनके जो गुण हैं वो आपके अंदर आएंगे. जैसे आप सागर के समीप जाएं तो वहां की शीतल लहरों से हमें कुछ फीलिंग होती है ना. अगर आप अग्नि के समीप जाएं तो अग्नि की जो गरिमा है उसको हम फील करते हैं, ऊष्मा को फील करते हैं. जैसे जब आप शिव बाबा को याद करते हैं और उनके गुणों का चिंतन करते हैं तो वो गुण आप में ट्रांसफर हो जाते हैं. इसलिए हम सबको कहते हैं कि जैसा बाबा का चित्र यहां रखा हुआ था ना, सब अपने घर में जरूर लगाएं. उससे वैसे भी पॉजिटिव एनर्जी फैलती रहती है और बाबा को देखते हुए आपने उनके गुणों को अंदर ही अंदर याद करना है. सारे चाहे याद ना भी रहें, आप इन गुणों के साथ मेरा शब्द याद कर लेंगे कि मेरे बाबा शांति के सागर हैं, मेरे बाबा सुख के सागर हैं. फील भी करेंगे उसको, खाली सोचना नहीं, उसको फील करना है. जैसे सूर्य की किरणें आपके अंदर आती हैं तो आप एनर्जी फील करते हैं, ऐसे बाबा की किरणों को आप महसूस करेंगे. और जितना आप एकांत में बैठेंगे, गुणों का चिंतन करेंगे, तो ये गुण आपके अंदर आते जाएंगे. तो पांच गुण आप मेरे साथ बोलेंगे, ठीक है? सभी मिलकर बोलेंगे, मेरे बाबा शांति के सागर हैं. थोड़ा अच्छे से स्वर में बोलेंगे और अनुभूति के साथ शिव बाबा का वो स्वरूप बुद्धि में याद रखते हुए, उस बिंदु रूप को अपने सम्मुख रखते हुए, मेरे बाबा शांति के सागर हैं, मेरे बाबा आनंद के सागर हैं, मेरे बाबा सुख के सागर हैं, मेरे बाबा पवित्रता के सागर हैं, सर्वशक्तिवान हैं. इन गुणों को आपने बार बार याद करना है. हो सके तो अपनी डायरी में लिखिएगा, बाबा के सभी गुणों को मेरा शब्द करके लिख लीजिएगा. जैसे कि वो परम पिता हैं, परम शिक्षक हैं, परम सतगुरु हैं, पवित्रता के भंडार हैं, क्षमा के सागर हैं, दिव्य बुद्धि के दाता हैं. पहला काम क्या करना है? हमें शुक्रिया करना है. दूसरा, शिव बाबा के गुणों का चिंतन करना है. तीसरा, जो मूलभूत बात है जिससे मेडिटेशन की शुरुआत होती है, वो है अपने को आत्मा समझना है. अगर आप आत्मा समझ के नहीं बैठेंगे ना, तो आपका ध्यान कभी कहीं भटकता ही रहेगा. क्योंकि इस मन बुद्धि को ना आनंद की तलाश होती है. अगर एक जगह नहीं मिला तो दूसरी जगह चल पड़ते हैं. ये मन और बुद्धि दोनों शक्तियां हैं. मन सोचता है, बुद्धि विजुअलाइज करती है. अगर आप इन दोनों शक्तियों को साथ लेके चलेंगे तो आपकी एकाग्रता बहुत अच्छी बनेगी और अपने को आत्मा फील करते आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे. जब मैं ज्ञान मार्ग में आई तो मैं जब भी आती थी तो सेंटर पे यही बात चल रही होती थी कि अपने को आत्मा समझो और शिव बाबा को याद करो, ये मुख्य बात है. तो मुझे ये बात बहुत बोर करती थी, बहुत ज्यादा. जैसे लगता था कि इन्हें ना और कुछ आता ही नहीं है, सारा दिन आत्मा आत्मा आत्मा, ये आत्मा समझना कितना मुश्किल है. तो एक दिन मैंने अपनी जो सीनियर दीदी है उनको ये बात बोली कि मुझे ना हमेशा कुछ नया नया ही चाहिए, वही पुराने वाली बात नहीं चाहिए, और ये आत्मा वाली बात तो मुझे बहुत ही बोर करती है, मुझे क्या करना चाहिए. मैंने बड़ी नम्रता से उनको जब कहा तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि जिस दिन आप अपने को आत्मा महसूस कर लेंगे ना, तो उस दिन आपके लिए योग बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान. जिस दिन आप अपने को आत्मा महसूस कर लेंगे तो आपको परमात्मा का सानिध्य अनुभव होगा. तो मैंने सोचा कि क्या करना चाहिए उसके लिए. तो मैंने स्पेशली उसके लिए 3 दिन का मौन रखा. मुझे जैसा कहा गया कि आप साइलेंस में रह के सबको आत्मिक दृष्टि से देखना, अच्छा चिंतन करना, भोजन पे ध्यान देना, मतलब जो योग के 3-4 नियम है मैंने उनको पूरा फॉलो किया. तो मुझे पहली बार ये अनुभव हुआ कि मैं इस शरीर से अलग एक दिव्य प्रकाश हूं, चेतना हूं। ये तो एक मंदिर है जहां पर मैं आत्मा बैठी हूं। इन नेत्रों से देखने वाली, सुनने वाली, बोलने वाली मैं एक स्टार हूं। जिस दिन ये फील हुआ उस दिन से योग बहुत आसान हो गया। एकांत में जाके आकाश के सितारों को देखा और उनसे मिलान किया कि ये आकाश में चमक रहे हैं, हम यहां धरती पर हैं, पर मैं भी ऐसा स्टार हूं। रोज 15 मिनट एकांत का टाइम निकाला, आसमान में सितारों को देखा, तब ये अनुभूति हुई कि मैं एक पीसफुल स्टार हूं। आप भी चलते फिरते प्रैक्टिस करें, आपको इतना अच्छा लगेगा, क्योंकि योग का ये पहला आधार होता है कि आप अपने आत्मिक स्वरूप में टिके, तब आप सुप्रीम से कनेक्ट हो पाते हैं। ये तीनों चीजों का योग में हम विशेष ध्यान रखते हैं, और इस योग के चार मुख्य नियम हैं, जिसमें से सबसे पहला नियम है मन वचन कर्म की पवित्रता। हमारा ध्यान क्यों नहीं लग रहा, क्यों भटक रहा है? क्योंकि हम नियमों को फॉलो नहीं करते हैं। बहुत आसान है, हर कोई कर सकता है, हर कोई कर सकता है, क्वाइट इजी। सबसे पहला है मन की पवित्रता, मन वचन कर्म की पवित्रता। इस मन में आपको किसी के लिए बुरा नहीं सोचना, इस मन को मंदिर बनाना है, इस मन को एक सुंदर बगीचा बनाना है जिसमें सबके लिए शुभ भावनाओं के फूल खिले हों। कोई भी नेगेटिव बात नहीं रखनी, अगर है तो उसको समाप्त कर देनी है। जैसे आज सुबह हमने क्षमा योग किया, किस किस ने किया? हाँ, कुछ क्षमा करके, कुछ बातों को फुल स्टॉप लगा के इस मन को बहुत शांत शक्तिशाली बना के रखना है। कोई भी व्यर्थ की बातों को स्थान नहीं देना। जैसे आपके कमरे में कोई गंदगी फैलाए, आपको अच्छा नहीं लगता ना, आप सोचते साफ करो, ऐसे इस मन को भी साफ करना बहुत जरूरी है। पहला है मन की पवित्रता, फिर है वचन की पवित्रता। कुछ लोग दिन में बहुत कष्ट देते रहते हैं दूसरे लोगों को ना, कहीं कुछ बोल देंगे, कहीं कुछ बोल देंगे। अगर आपके मुख से अपशब्द निकलते हैं, दूसरों को दुख पहुंचता है, तो रिटर्न में उसके बदले आपको आहें और बददुआएं मिलती हैं। आपके मुख का एक एक बोल सुख पहुंचाने के लिए हो, ये योग का नियम है। आप करके देखिए कि ये जून मास वरदानी मास है, क्योंकि इसमें जगदम्बा मां का स्मृति दिवस भी होता है। आप पहले कुछ दिन का संकल्प लीजिए कि मुझे वाक संयम रखना है, गलत बोलने की बजाय चुप रहना ज्यादा अच्छा है। यहां का एक स्लोगन है, आपने भी सुना होगा, कौन सा स्लोगन है बोल के ऊपर? मेरे साथ साथ बोलेंगे, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच समझ के बोलो, शुभ शुभ बोलो। आप पहले 21 दिन का एक रिकॉर्ड बनाइए कि मैंने एक भी अपशब्द किसी को नहीं बोला। ऐसे बहुत सी आत्माएं जिन्होंने रिकॉर्ड बनाए हुए हैं अपने, कि जब भी वो बोलेंगे वो वरदानी बोल बोलेंगे, गलत शब्द किसी को नहीं बोलेंगे। किसने बहुत अच्छी बात कही है मेरे साथ साथ बोलेंगे, बोल सको तो मीठा बोलो, कटु बोलना मत सीखो। सभी मिलकर बोलेंगे और मुस्कुराते हुए बोलेंगे, बोल सको तो मीठा बोलो, कटु बोलना मत सीखो, बिछा सको तो फूल बिछाओ, शूल बिछाना मत सीखो, जला सको तो दीप जलाओ, दिल जलाना मत सीखो, बिछा सको तो फूल बिछाओ, शूल बिछाना मत सीखो, मिटा सको तो अहम मिटाओ, रहम मिटाना मत सीखो। आपने अपने बोल के ऊपर पूरा ध्यान देना है। सुबह से लेकर रात्रि तक आपके बोल से दूसरे को सुख पहुंचना चाहिए। वैसे भी बोलो शब्द का जब आप संधि विच्छेद करते हैं तो ये बनता है बो प्लस लो। ये जब आप कुछ बोल रहे हैं समझो आप कोई बीज बो रहे हैं, जैसा बीज बोएंगे वैसा फल निकलेगा। गलत बोलने से चुप रहना ज्यादा अच्छा है। आपकी मीठी वाणी से सुंदर इतिहास की भी रचना हो सकती है, महाभारत भी बन सकता है। तो ये हमारा मन वचन कर्म की पवित्रता योग का नियम है। कर्म की पवित्रता क्या है? हर कर्म से पहले आप परमात्मा का आह्वान करेंगे। आप भोजन बनाना शुरू कर रहे हैं, ऑफिस में बैठ रहे हैं चेयर पर, पहले शिव बाबा को बुलाएंगे। कैसे बुलाएंगे? मेरे साथ साथ बोलेंगे, मेरे बाबा, मेरे साथी, मेरे मददगार आ जाओ। क्लियर। योग का ही पहला नियम मन वचन कर्म की पवित्रता। दूसरा शुद्ध अन्न, कहते जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन, जैसा होगा मन वैसा होगा अन्न। यहां का भोजन कितना स्वादिष्ट है, फील किया आपने? तो जब आप घर में भी भोजन बनाते हैं तो परमात्मा की याद में बनाना है, उनको भोग लगाना है, और जब स्वयं स्वीकार करना है तो प्रसाद समझ के खाना है। भोजन करते हुए कोई भी मोबाइल आदि नहीं देखना, परमात्मा मुझे खिला रहे हैं इस स्मृति में भोजन को स्वीकार करना है, सात्विक भोजन करना है। क्योंकि अन्न एक ऐसी शक्ति है जिससे मन का निर्माण होता है, तो भोजन करते समय आपको बहुत प्रसन्न मुद्रा में भोजन करना है और परमात्मा का शुक्रिया करना है। कई भोजन के आते ही ना वो सारी वीक पॉइंट बोलना शुरू कर देते हैं, ये खाने से ये हो जाएगा, ये खाने, जो आया प्रभु प्रसाद है उनका धन्यवाद करो, उनकी याद से स्वीकार करो, और कुछ दिन के लिए यहीं से संकल्प लेके जाना कि अब हमें शुद्ध भोजन करना है, सात्विक भोजन करना है, तामसिक भोजन नहीं। प्याज लहसुन ये तामसिक भोजन होता है, ज्यादा तले हुए, खटाई, मिर्च, ये सब तामसिक होता है। आप एक्सपेरिमेंट करें 1 वीक कि जब आपने सात्विक आहार लिया तो आपका मेडिटेशन कितना अच्छा हो गया, आपके लिए योग बड़ा सरल हो जाएगा। ये योग का दूसरा नियम है कि हमें सात्विक फूड लेना है, और जब लेना है तो उसको चार्ज करना है। मान लीजिए पानी भी आप लेते हैं तो लेते ही तुरंत ना पी लें, 30 सेकंड के लिए पॉजिटिव एनर्जी उसमें जरूर डालें, फील करें कि शिव बाबा की किरणें इस जल पर आ रही हैं, भोजन पर आ रही हैं, और ये प्रभु प्रसाद है। तीसरा नियम, पहला था मन वचन कर्म की पवित्रता, दूसरा शुद्ध अन्न, तीसरा दैवी गुण। दिव्य गुण मेडिटेशन से ही आते हैं, जैसे सरलता, इजी नेचर, मधुरता। किसी को आप कुछ भी नहीं दे सकते, 2 मीठे बोल तो बोल सकते हैं ना, कहते गुड़ ना दे सको तो कोई ऐसी बात नहीं, पर गुड़ जैसा मीठा सबको देते रहो। ऐसे एक बहुत अच्छा गुण जो हमें योग से प्राप्त होता है वह है अनुशासन, स्वयं पर पूरा शासन करें। राजयोग का मतलब ही है कि हमारा अपनी कर्मिंद्रियों पर पूर्ण शासन हो, जो हम इसे आदेश दें वो पालन करें। योग से ही हमें एक गुण प्राप्त होता है अंतर्मुखता, अंतर की ओर अपने आप को देखना। ऐसे दिव्य गुणों की बहुत लंबी लिस्ट है। चौथा नियम आता है सत्संग, अच्छे संग में रहना बहुत जरूरी है। कहते जैसा संग वैसा रंग। ऐसे बहुतों के मन में आ रहा होगा कि यहां तो हमें सब अच्छा लग रहा है, पर जाना तो वापस उसी दुनिया में है, कल की ट्रेन है, किसी की आज है, वहां जाके क्या होगा। वहां जाके भी आप 1 घंटा अपने लिए जरूर निकालें। जैसे जब हम मोबाइल यूज करते हैं तो उसको चार्ज भी करते हैं ना, ज्यादा यूज करते हैं तो ज्यादा चार्जिंग की जरूरत होती है। आप कितने भी बिजी क्यों ना हो, सुबह शाम मेडिटेशन के लिए टाइम जरूर निकालिए। आप 1 घंटा अपने लिए निकालेंगे तो आपके 23 घंटे बहुत अच्छे हो जाएंगे। अक्सर हम अच्छे काम के लिए सोचते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन ये टाइम निकालना आपका सफल होगा। एक बच्चों वाली कहानी सुनाते हैं कि एक व्यक्ति जो लकड़हारा था वो वृक्ष की डाली को काट रहा था, लेकिन वो उससे कट नहीं रही थी, क्योंकि जो उसको कुल्हाड़ा था वो बहुत ज्यादा वीक था, मतलब तेज नहीं था। तो उसका दोस्त उससे पूछता है कि क्या कर रहे हो, कहते इस डाली को काट रहा हूं पर ये कट नहीं रही। वो कहते पहले ना इसको तेज कराओ, आपका जो कुल्हाड़ा है ना इसको तेज कराने की जरूरत है। कहते मेरे पास टाइम नहीं है, आई हैव नो टाइम। उसका दोस्त वापिस आता है 2 घंटे के बाद, देखते ही तो अभी भी वही काम कर रहा है। कहते मैंने आपको कहा था ना इसे तेज कराओ। कहते मैंने भी तो बोला था ना मेरे पास टाइम नहीं है। कहते देखो 3 घंटे हो गए अभी तक तुम्हारी डाली नहीं कटी, तुम चलो मेरे साथ। वो अपने साथ ही लेके जाता है, उसको तेज कराता है। जाने में 15 मिनट लगते हैं, तेज कराने में 15 मिनट लगते हैं, और उससे अगले 15 मिनट में वो डाली कट जाती है। तो वो अपने दोस्त को कहता है कि देखो कितनी देर का काम था और तुमने कितना टाइम लगाया। विदाउट स्पिरिचुअलिटी हम ऐसे ही टाइम लगाते रहते हैं, कभी कहीं, और अच्छी बातों के लिए क्या कहते हैं, टाइम नहीं है। लेकिन ये सत्संग हर रोज बहुत जरूरी है। आप अपने दिनचर्या की शुरुआत परमात्मा की याद से करेंगे, अमृत वेला मेडिटेशन से करेंगे, और उसके बाद उसके महावाक्य जरूर सुनेंगे। हर सेंटर पर परमात्मा के महावाक्य सुनाए जाते हैं। इस कोर्स को भी आप कंप्लीट करेंगे, यहां आपके केवल 3 लेसन हुए हैं, बड़े अच्छे इसके और विषय हैं कि सृष्टि चक्र क्या है, कैसे शिव बाबा ने इन ब्रह्मा बाबा के द्वारा ज्ञान दिया, और जो ज्ञान उन्होंने दिया उसको मुरली कहते हैं, वो हर रोज सेंटर पे सुनाई जाती है। और हम सब एक नियम बनाते हैं कि हम नाश्ता बाद में करेंगे, पहले मुरली सुनेंगे। तो ये सत्संग हर रोज करना वह जरूरी है। अगर हम सेंटर जाएंगे तो हमें वहां का अच्छा वातावरण मिलेगा। कुछ लोग फोन पे भी सुनते हैं, अच्छी बात है ना से। हाँ, जब कोरोना काल था तो मजबूरी में बहुत लोगों ने उसी पे कोर्स किया, लेकिन अभी कोई हमारी मजबूरी नहीं है, हम जा सकते हैं। ये 1 घंटा निकालने से आपके 23 घंटे अच्छे हो जाते हैं। तो जो भी आपके नजदीक सेंटर है आपको वहां से जुड़ना है, और वहां पर जाकर कोर्स भी पूरा करना है, और ईश्वरीय महावाक्य जिसको मुरली कहते हैं वो जरूर सुननी है। कोई कोई तो पुराने हैं, सुनते ही होंगे, लेकिन जो नए हैं वो इस कोर्स को भी पूरा करेंगे और मुरली भी सुनेंगे, और सुबह शाम का टाइम फिक्स कर लेंगे कि हमें 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को मेडिटेशन जरूर करना है। इससे ज्यादा करें तो और अच्छी बात, लेकिन शुरुआत इतने से ही करें, और अच्छी कॉमेंट्रीज लगा के आप मेडिटेशन कर सकते हैं। धीरे धीरे आपको ऐसा अभ्यास हो जाएगा कि आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम यहाँ रेड लाइट करते हैं, आपने देखा होगा कि यहाँ लाल लाइट हो जाती है। इसका भी एक मीनिंग है कि जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो आपको बुद्धि से परम धाम पहुंचना है, तो वहां पर सुनहरा लाल प्रकाश है, तो हमारी बुद्धि ऊपर चली जाए इसलिए हम यहाँ रेड लाइट करते हैं। और रेड लाइट एक सिग्नल भी है कि अब आपको बातचीत नहीं करनी है, अब आपको योग करना है। ऐसे म्यूजिक भी चलता है, अच्छे भजन भी चलते हैं, आपने उनको ध्यान से सुनना है। अच्छे गीत भी गॉड से कनेक्ट करते हैं। कईयों को अपना चिंतन करना नहीं आता कि वो क्या सोचें, तो वो अच्छे गीत को ध्यान से सुनते हैं, ये भी मेडिटेशन होता है। ऐसे जो म्यूजिक चलता है उसके पीछे भाव ये है कि 23 घंटे हम दुनिया में रहते हैं, 1 घंटा शिव बाबा के घर में आते हैं, तो ना चाहते भी बुद्धि वहां कई बार जाती है, तो हमारा ध्यान ना भटके इसलिए हम म्यूजिक आदि का प्रयोग करते हैं। शुरू शुरू में आपको इन सब साधनों की जरूरत रहती है, आगे चलकर चाहे इनमें से कुछ भी ना हो, आप गाड़ी में बैठे हैं आप शिव बाबा को याद कर सकते हैं, आप सैर कर रहे हैं बाबा मेरे साथ है, आप ये याद करेंगे तो ये भी उनकी याद है, और इस याद से बहुत कमाई होती है। चलते फिरते भी आपको अच्छा चिंतन करना है। जब हम योग करते हैं तो हम आंखें खोल के बैठते हैं, कईयों को लगता है कि ध्यान इधर उधर भटक जाता है, नेत्र खुले होते हैं और सामने हम बिंदु शिव बाबा पे ध्यान लगाते हैं। किस लिए? क्योंकि आंखें बंद करके करेंगे तो सारा दिन तो बंद करके बैठ ही नहीं सकते, हम कर्म योगी हैं। धीरे धीरे अभ्यास से आपके अंदर ये चीज आएगी कि नेत्र भी खुले हैं और योग आपका लगा हुआ है। जैसे आप सामने बैठे हैं तो मैं आपके मस्तक में स्टार को देख रही हूं, और मैं ऊपर से शिव बाबा से भी कनेक्ट हूं, तो योग लगा हुआ है। तो इस योग में हम नेत्र खुले रखते हैं। जब हम योग करते हैं तो योग करते समय पहली अवस्था होती है स्वचिंतन करना, शुभ चिंतन करना, जिसमें आप आत्मनिरीक्षण करते हैं, अपने आप को कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन देते हैं, जैसे मैं पावरफुल सोल हूं, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूं। अच्छा अच्छा चिंतन जो करते हैं फर्स्ट स्टेप में सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, वो पहला कदम है योग का। और सेकंड स्टेज में आप शिव बाबा से बातचीत करते हैं, रूहान करते हैं, मन ही मन उनसे आप बातें करते हैं। आप भोजन करने लगे हैं तो आप कहते हैं बाबा आ जाओ मेरे साथ भोजन स्वीकार करो। दिन में किसी ने आपके साथ ऊपर नीचे कुछ किया तो आपने बाबा को मन में सुना दिया कि बाबा आज मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। आप उसके साथ एक रिश्ता जोड़ते हैं कि वो मेरे पिता हैं, शिक्षक हैं, सतगुरु हैं या दोस्त हैं। कोई भी एक पक्का कर लीजिए, खुदा दोस्त है और मुझे हर बात उसको सुनानी है। जब हम योग करते हैं तो सेकंड स्टेज में हम अपने मन की बातें उनके साथ करते हैं, और जो थर्ड स्टेज होती है उसमें हम बिंदु बनकर उस बिंदु परमात्मा से कनेक्ट हो जाते हैं। तो योग करते समय हमारे नेत्र भी खुले रहें, मन में अच्छा चिंतन चलता रहे, चिंतन करते करते हम वैसा दर्शन करते हैं। तो अभी हम कुछ एक विजुअल देखेंगे कि हमें योग में क्या क्या करना है. सबसे पहला हम अपने को आत्मा कैसे समझते हैं वो हम देखेंगे. जैसा जैसे आप पीछे देखेंगे आपने फील करना है कि आपके मस्तक में यहां ज्योति बिंदु सितारा चमक रहा है कि शरीर ज्योति बिंदु आत्मा चमक रही हूं. मैं ज्योति बिंदु सितारा इस देह से ऊपर परम धाम की ओर जा रहा हूं. सूर्य चांद सितारों को पार करते हुए मैं परम धाम में बाबा के पास इस विजन को आप अपने मन बुद्धि में अच्छे से इसका मन में चित्र बना लेंगे. मैं शक्ति संपन्न आत्मा हूं, लाइट हूं. आत्मा समझने से सातों गुण पवित्रता, शांति, सुख, प्रेम, आनंद और शक्ति फाउंटेन की तरह मुझ में समा रहे हैं. अलर्ट होकर बैठेंगे, तन मन से अलर्ट होकर फील करें. ये सातों गुण फाउंटेन के रूप में कुछ आत्मा पर पड़ रहे हैं. सातों गुण पूरे शरीर में फैल रहे हैं. मेरा तन स्वस्थ है, मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम सब ठीक हो रहा है. सातों गुणों को पूरे शरीर में फैलता हुआ देखें. बाबा से किरणें आ रही हैं. ये सातों गुण पूरे शरीर में फैल रहे हैं. तीसरा विजन हम देखेंगे, परमात्मा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है. जैसा आप देख रहे हैं वैसा रखेंगे भी सही। फील करें ये वरदानों का हाथ है, दुआओं भरा हाथ है, शक्तियों भरा हाथ है। सभी रखेंगे, महसूस करें ये लाइट का हाथ, दुआओं का हाथ, आशीर्वाद का हाथ है। इस हाथ में बहुत शक्ति है। मेरा चित्त शांत शक्तिशाली है। बाबा की लाइट मुझ में आ रही है और मुझ में समाती जा रही है। अपने में शक्ति भरकर हम खुद को शक्तिशाली अनुभव करेंगे और सारे ग्लोब को, विश्व की आत्माओं को भी सकाश देंगे, क्योंकि सारा विश्व हमारा परिवार है। ग्लोब की आत्माएं परमात्म शक्ति को पाकर सुख का अनुभव कर रही है, सब सुखी हो जाए। इस विश्व ग्लोब में हमारा सारा विश्व परिवार है, को आप दिल से दुआएं देंगे, सबका भला हो, सब सुख पाए। पांच सेकंड के लिए सबके लिए दुआएं करेंगे, अपना दुआओं वाला हाथ ऊपर करें। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा फील करें कि आपके हाथ से भी लाइट पूरे ग्लोब पे जा रही है। सभी मिलकर बोलेंगे, सभी स्वस्थ रहें, सभी प्रसन्न रहें, सभी प्रभु की छत्र छाया में सदा आनंदित रहें, सबके घर में शांति हो, मन में शांति हो, परिवार में एकता हो, सभी सरल स्वभावी बने, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सभी स्वस्थ रहें। अभी कुछ पल के लिए अपने आप को कमल आसन पर अनुभव करें। कमल का पुष्प न्यारा भी होता है, प्यारा भी होता है। कमल आसन पर विराजमान होना अर्थात संसार से, वस्तुओं से, अपने रोल से डिटैच हो जाना, सब कर्तव्य निभाना लेकिन फंसना नहीं, कमल आसनधारी बन जाना। कमल आसन पर बैठकर उस सुप्रीम सोल से कनेक्ट हो जाए, बाबा की पवित्र किरणों को अपने में आता देखें। मेरे बाबा मेरे साथ हैं, उनकी शक्तियां मेरे साथ हैं, इस एक विचार को 3 बार मन में दोहराएंगे। मेरे बाबा मेरे साथ हैं, उनकी शक्तियां मेरे साथ हैं। ज्योति बिंदु स्वरूप पर मन को टिकाते हुए उनकी अनंत किरणों को अपने में भरें। जो जो आपने विजन देखे हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। शुक्रिया करना भी मेडिटेशन होता है, किसी के लिए शुभ सोचना भी मेडिटेशन होता है। जैसे कोई आपसे बदला लेने का विचार रखता है पर आप ही सोचते हो कि इसका कल्याण हो जाए, तो ये अंदर से जो आपने ब्लेसिंग्स दी तो ये भी मेडिटेशन है। याद रखेंगे, शुक्रिया करना भी मेडिटेशन, दुआएं देना भी मेडिटेशन है, क्षमा करना भी मेडिटेशन है, और कार्य से पहले परमात्मा को बुलाना, इसको हम कहते हैं आह्वान योग, कि बाबा आओ अपना कार्य सफल करो। भोजन बनाने से पहले, ऑफिस में चेयर पर बैठने से पहले कुछ सेकंड बाबा का आह्वान करना। बाबा हमें कहते कि 5 केले आपको रोज खाने हैं। पता कौन से हैं 5 केले जो रोज खाने हैं? लेके जाएंगे आज, ठीक है? रास्ते में भी बहुत काम आएंगे। मेरे साथ साथ बोलेंगे, अकेले आए थे, अकेले जाना है, अकेले में अकेले होकर शिव बाबा को याद करना है। फिर से बोलेंगे, अकेले आए थे, अकेले जाना है, अकेले में अकेले हो शिव बाबा को याद करना है। बाबा का फोन नंबर भी याद रखेंगे। शिव बाबा से कनेक्शन कब जुड़ेगा? जब आप 3 बिंदियां पहले लगाएंगे। पहला, मैं आत्मा बिंदी हूं, दूसरा शिव बाबा बिंदी है, और तीसरा जो बातें बीत गई उनको बिंदु लगाना। अगर ये बिंदु नहीं लगेगा तो फिर कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। ये 3 बिंदु लगाना, ये बाबा का फोन नंबर है 0001। मैं आत्मा बिंदी हूं, शिव बाबा बिंदी है, जो बातें बीत गई वो भी बिंदु, और मेरे सारे संबंध एक के साथ। आज से उनको अपना एक अच्छा दोस्त बनाएंगे, हर बात उनसे शेयर करेंगे। सोने से पहले एक पत्र बाबा को रोज लिखेंगे और अपने ही शब्दों में लिखेंगे, जिससे आपका मन लाइट हो जाए। अपना नाम लिखने की जरूरत नहीं है, अपने ही वर्ड्स आप यूज करें, लेकिन सोने से पहले मन को हल्का करके सोना है। इस योग का बेस्ट टाइम है अमृत वेला। यहाँ की बड़ी अच्छी बात है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, कि जो सुबह 4 बजे उठते हैं उससे पहले उठते हैं वो बाबा के लाडले बच्चे हैं, जो 5 बजे उठते हैं वो योगी होते हैं, जो 6 बजे उठते हैं वो भोगी होते हैं, जो 7 बजे उठते हैं वो रोगी होते हैं, और जो 8 बजे उठते हैं उनका तो इसमें नाम ही नहीं है। जब हम घर में होते हैं तो बहुत देरी से सोते हैं, देरी से उठते हैं, पर हमें जल्दी सोना है और जल्दी उठना है। और उठ के क्या करना है? उठ के पहले 15 मिनट पावरफुल मेडिटेशन करना है, क्योंकि उस समय आपका सबकॉन्शियस माइंड खुला है। जब आप सोते हैं तब भी करके सोना है, उस समय भी आपका सबकॉन्शियस माइंड खुला होता है। जब आप बहुत खुश होते हैं उस समय भी ध्यान रखें कि हमें पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है और इस योग का प्रयोग करते रहना है। इस योग का प्रयोग अपनी आदतों को ठीक करने में जरूर करें। जैसे किसी की गुस्सा करने की आदत है, किसी की बहुत बोलने की आदत है, किसी की ओवर थिंकिंग की है, आप योग करेंगे तो ठीक हो जाएगा। स्पेशली बैठे आप बाबा के सामने और बाबा को बताएं, स्वीकार करें कि बाबा ये मुझ में बड़ी गलत आदत है कि मुझे गुस्सा बहुत आता है। तो बाबा को कहना है और बाबा से दृष्टि लेनी है, प्रैक्टिस करनी है कि मैं शांत आत्मा हूं। ये नहीं सोचना बार बार कि गुस्सा बहुत आता है, बट प्रैक्टिस करनी है हर घंटे में एक मिनट कि मैं पीसफुल स्टार हूं, शांति मेरा स्वधर्म है। जैसे आप दूसरे को बोलते हो ना ओम शांति, तो आपने खुद को भी ओम शांति बोलनी है। तो भी बाबा को अपने साथ रखते हुए हम अपनी जीवन यात्रा को बहुत सरल सुगम बनाएंगे। योग क्या है कि बाबा मेरे साथ हैं, योग क्या है कि मैं बाबा का हूं, बाबा मेरे हैं, वो मेरे साथ हैं। कैसे पता चलेगा? किसी परिस्थिति में आपने पेशेंस रखा, ये उनका साथ है। किसी भी बात में आप निराश नहीं हुए, आपको आशावादिता है सब ठीक हो जाएगा, ये उसका साथ है। वैसे भी युवा उसे कहते हैं जो कभी भी कहीं भी किसी भी परिस्थिति में निराश ना हो। कभी निराश ना होना जिंदगी की सबसे बड़ी जीत होती है। ना अपने से निराश होना है, ना किसी और से होना है, ये उनका साथ है। किसी भी परिस्थिति में आप हिम्मतवान बने रहते हैं, ये बाबा का साथ है। तो साथ रखेंगे सभी, किस किस को पसंद है बाबा का साथ? जी, मिलकर बोलेंगे, मैं शिव बाबा का बच्चा हूं, मेरे बाबा मेरे साथ हैं, उनकी शक्तियां मेरे साथ हैं, सब अच्छा ही अच्छा, दिन भी अच्छा है, रात भी अच्छी है, सब अच्छे हैं, सब अच्छा हो रहा है। अब एक गीत चलेगा जिसको हम सब मिलकर गाएंगे, ठीक है? खड़े होके जाएंगे, अच्छा लगेगा।
बात अच्छी है, हमारा दिन भी अच्छा है, हमारी रात अच्छी है, आपका साथ है बाबा। कभी न सोचा था हमने तो होगी। मरुथल में हरियाली हमारे मन की बगिया में होगी चाहूं और खुशहाली। आपके प्यार की दिल पर, आपके प्यार की दिल पर हुई बरसात अच्छी है। आपका 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 साथ है बाबा तो हर एक बात अच्छी है। हमारा दिन भी अच्छा है, हमारी रात अच्छी है।
आपका जीवन पल पल खुशियों से भरपूर हो और आप हमेशा बाबा की छत्र छाया में रहें। बाबा का हाथ सदा आप पर रहे, मेरी मंगल कामना। धन्यवाद। ओम श्री।